बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और प्रेमी नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से सुरक्षित और भले चंगे होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम मत्ती रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 11 अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने पिछले अध्ययन में शब्द के दिन के ना मानने और फरीसियों के साथ यीशु के वाद विवाद को देख रहा है। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 8 पद से आरंभ करते हैं। तो आइए हम इस पद को पढ़ें जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी प्रभु है। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि वह उनके अति महापवित्र विधि में यह कहते हुए दखल देते हैं कि वह सबके दिन के भी प्रभु हैं। फरीसियों की दृष्टि में वह कोई बड़ा दावा नहीं कर सकता था और इसने निश्चित रूप से उनके कड़वेपन और घृणा को उत्पन्न किया। अब हम उस जगह या क्षेत्र को छोड़ते हैं जहां पर विरोध हुआ था और अब हम यहूदियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु अभी भी हम उसी प्रश्न का सामना करते हैं जो शब्द के दिन के विषय में है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। यहां पर ध्यान दीजिए कि वह उनके मंदिर में गया, हमारे नहीं परंतु उनके मंदिर में गया। वह मंदिर के बारे में भी लगभग मिलता जुलता शब्द ही कहते हैं। पहले यह परमेश्वर का मंदिर था, परंतु अंत में उसने कहा तेरा घर उजाड़ पड़ा है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं, देखो वहां सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के अभिप्राय से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर ना निकाले? क्या यह सूखे हाथ वाला पुरुष जानबूझकर फरीसियों के द्वारा वहां पर लाया गया था ताकि यीशु को उसके चंगाई के द्वारा फंसा सके? यदि यह ऐसा है तब यीशु के शत्रुओं के द्वारा दो महत्वपूर्ण बातों में स्वीकृति है। पहला है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उसके पास बीमार को ठीक करने का सामर्थ है, जैसे हमने देखा है कि उसके शत्रुओं ने उसके चमत्कार करने की योग्यता पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया। इससे पहले कि आप उसके चमत्कारों पर प्रश्न करें, आपको 2000 साल दूर रहकर एक पुराने पुस्तकालय में मास्टर या डॉक्टर की उपाधि लेनी होगी। फरीसियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि उसके पास बीमारों को ठीक करने की सामर्थ है, इसलिए उन्होंने सूखे हाथ वाले व्यक्ति के साथ यह योजना बनाई। और दूसरा है, उन्होंने इस बात को भी जान लिया था कि जब कोई असहाय व्यक्ति उसके रास्ते में आएगा तो वह तरस से भर जाएगा कि वह उसे चंगा करे, चाहे वह सप्त का दिन ही क्यों ना हो। कैसी स्वीकृति है! सप्त के दिन चंगाई की वैधता के बारे में उनका प्रश्न पूछना उनकी उसे फंसाने की योजना के अंतर्गत था, परंतु यीशु ने अपने शत्रुओं को ही फंसा दिया। उन्होंने यह मान लिया कि भेड़ को सप्त के दिन भी बचाया जा सकता है। वास्तव में मूसा की व्यवस्था ऐसा करने के लिए अनुमति देती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब के दिन भलाई करना उचित है। सब बातों का मूल प्रश्न यह है कि क्या वह सब के दिन अच्छा काम या भला काम कर सकता है? उनके उत्तर की ओर लापरवाही से दिखाते हुए हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 13 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने सब्त के दिन उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को ठीक कर दिया। क्या उसने व्यवस्था को तोड़ा? आपका उत्तर क्या है? मेरा उत्तर है कि उसने कोई व्यवस्था नहीं तोड़ा। फरीसी यीशु को मार डालने की योजना बनाते हैं। यह यीशु मसीह और धार्मिक शास्त्रों के बीच दरार पड़ने का एक चिन्ह है। यही वह स्थान है जहां पर उन्होंने उसे मार डालने का निर्णय लिया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब फरीसी बाहर निकले और उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। मित्रों, इस समय तक फरीसी उसके साथ मैत्रीपूर्ण थे। वे अपने से अधिक शक्तिशाली का सहारा लेना चाहते थे और उससे जुड़कर उसके साथ चलना चाहते थे, परंतु प्रभु ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और वे उसके शत्रु बन गए। शब्द के दिन के ऊपर प्रश्न के द्वारा उन्हें बीच में दरार पैदा हुई और यह लड़ाई बाहर दिखने लगी। यहीं से इन भेड़ियों की घृणा उसके प्रति बढ़ गई और तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाकर ठंडी सांस नहीं ली। अब उन्होंने उसे मारने की योजना बनाना आरंभ कर दिया और वे निसंदेह उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भीड़ का डर था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 15 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु यीशु यह जानकर वहां से निकल गया। बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़े और उसने उन सबको चंगा किया। फरीशियों के इस व्यवहार के कारण यीशु ने कुछ समय के लिए अपने आप को रोका, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। जब तक उसका निश्चित समय नहीं आ जाता, वे उसे नहीं छुएंगे। यहाँ पर एक मजेदार बात पर ध्यान देने योग्य है कि इस पद में यीशु ने भीड़ में से सिर्फ थोड़े लोगों को ही चंगा नहीं किया, परंतु उसने सबको चंगा किया। हम उस दिन के प्रभाव के विषय में विचार भी नहीं कर सकते हैं जो उसने उस दिन बनाया। यह पूर्ण रीति से आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्हें दो में एक करना ही था कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। बीच में रहना उनके लिए असंभव था। वह आज भी विवादास्पद है और शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। गंदी पुस्तकें और नए गंदे खेल उसकी निंदा कर रहे हैं। या तो आप उसके मित्र होंगे या शत्रु। वह आपका उद्धारकर्ता या आपका न्यायी होगा। आप यीशु मसीह से नहीं बच सकते हैं। उसने बड़ी भीड़ को चंगा किया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना। मित्रों, प्रभु इस पृथ्वी पर एक बाजीगर या जादूगर या चमत्कार करने वाले बनकर नहीं आए थे। वह इसलिए आया कि वह मसीह होने के दावों को प्रस्तुत करे। जब उसे अस्वीकार कर दिया गया तो वह लगातार क्रूस की ओर बढ़ते चले। वह संसार का उद्धारकर्ता बने। उसके चमत्कारों के कारण भीड़ उसके ऊपर दबाव डालने लगी ताकि जैसा वो चाहता था वैसे अपनी सेवा को न कर सके। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 17 से 20 पदों में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो, देखो मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा डालूंगा और वह गैर यहूदियों पर उचित न्याय की घोषणा करेगा। वह न तो विवाद करेगा, न चिल्लाएगा और न कोई उसकी आवाज गलियों में सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक कि वह न्याय को विजयी न बनाए। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, जी नहीं, वह इसके बदले में उस सरकंडे को जोड़ेगा जो उसे ऐसा करने देगा तब। और वह टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा, जी नहीं, यदि वह निरंतर उसका इनकार करती है तो टिमटिमाती बत्ती एक न्याय की ज्वाला या आग बनकर बाहर आएगी। प्रभु इसे नहीं बुझाएगा क्योंकि मनुष्य के पास एक स्वतंत्र इच्छा है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उसी के नाम में गैर यहूदी आशा रखेंगे। मित्रों, हमारे दिनों में एक निश्चित गतिमान है जो न केवल साधारण भविष्यवाणी की पूर्णता की ओर बढ़ रही है, परंतु यह अन्य जातियों के लिए की गई भविष्यवाणी के पूर्ण होने की ओर भी है। उनको भी बचाना है। अपने लोगों के द्वारा मसीह को अस्वीकार करने के कारण उसका अनुग्रहमय आमंत्रण अन्य जातियों के लिए दिया गया। हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने पौलुस को अन्य जातियों के बीच प्रचारक के रूप में भेजा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे कि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। आगे हम देखते हैं क्षमा होने वाला पाप। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, यीशु के पास एक दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य लाया गया जो अंधा और गूंगा था, और उसने उससे चंगा किया और वह गूंगा मनुष्य बोलने और देखने लगा। इस पर सारा जन समूह चकित होकर कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की संतान हो सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारा मसीह है। उसके पास प्रत्यय पत्र है। यह उसका एक आश्चर्यजनक चमत्कार था जो उसने दिखाया। यह मृतक को जीवित करने से बड़ा नहीं परंतु उसके बराबर बड़ा था। यीशु मसीह का लगातार चंगाई करना, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना और चमत्कार करना, इन सब ने लोगों को निश्चय दिलाया कि वह निश्चय ही दाऊद की संतान अर्थात मसीहा है। परंतु फरीशियों ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जब फरीशियों ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उनके सरदार बलजबूल की सहायता से निकालता है। यह क्षमा न होने वाला पाप का प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसका अनुसरण करें। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 25 पद से लेकर के 27 पद में आगे पढ़ते हैं। उनके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं रहेगा, और यदि शैतान शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? फिर यदि मैं बलजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं? वे कभी नहीं कहेंगे कि उनके अपने लोग बलजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। मित्रों, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है जो मसीह की उपस्थिति में है। मसीह कह रहे हैं कि मैं यहां हूं। दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की सामर्थ्य मेरा प्रत्यय पत्र है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 29 से 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा या बोलेगा उसका यह अपराध न तो इस युग में और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। मित्रों, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे आपने कल किया है और आज प्रभु उसे क्षमा न करे, क्योंकि वह सब पापों के लिए मरा। पवित्र आत्मा इस संसार में इसलिए आया कि मसीह के उद्धार को मनुष्यों के लिए वास्तविक बनाए। मेरे मित्र, यदि आप परमेश्वर की आत्मा के कार्यों को रोकते हैं जब वह आपसे बात करता है, तो आपके पापों की क्षमा नहीं होती है। आपके लिए कोई भी क्षमा नहीं है, क्योंकि आपने उद्धार का इनकार कर दिया है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार को आपके लिए वास्तविक बनाया गया है, और यह पवित्र आत्मा का ही कार्य है कि वह आपको नया जीवन दे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में प्रभु क्षमा न होने वाले पाप के विषय में यह कहते हुए विस्तार करते हैं कि आत्मा के कार्य जो शैतान को श्रेय देता है, जबकि ये चमत्कार के काम मसीह ने परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा किए, पर कहा गया है कि यह बलजबूल की सहायता से यह काम करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आप देखें कि वे स्वयं प्रभु यीशु की और पवित्र आत्मा की गवाही को अस्वीकार कर रहे थे। हमारे दिनों में यह विशेष पाप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह यीशु मसीह जब पृथ्वी पर रह रहे थे तब ही की बात है और तब ही किया जा सकता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे आप करते हैं जिसके लिए क्षमा नहीं है। वास्तव में यदि आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि वही क्षमा को लाता है। या उस व्यक्ति के समान है जो एक विशेष बीमारी के कारण मर रहा है और डॉक्टर कहता है कि इसके लिए इलाज का या बचने का उपाय है, परंतु वह मनुष्य उस इलाज को अस्वीकार करता है और मर जाता है, बीमारी से नहीं परंतु इलाज को लेने से इनकार करता है। इसके कारण से पापों की बीमारी से छुटकारा है और पवित्र आत्मा इसे लागू करता है, परंतु यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो कोई भी छुटकारा नहीं है। यही एक तरीका है जिसके द्वारा आज पाप की क्षमा नहीं है अर्थात नहीं हो सकती है। प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 34 पद में, हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। मित्रों, आपको याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यही बात कही थी, हे सांप के बच्चों। अब हम अतिरिक्त सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 35 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मित्रों, किसी ने कहा, हृदय के कुएं में जो है वही मुंह की बाल्टी से होकर बाहर निकलेगा। यीशु के द्वारा धार्मिक अगुओं को अत्यंत कठोर निंदा करना इस बात को प्रकट करता है कि वह उनको अस्वीकार करता है। क्या उन्होंने क्षमा न होने वाला पाप किया था? कम से कम यह इन शत्रुओं के साथ की आखिरी फूट है और यह घाव कभी भी ठीक नहीं होगा। हम मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 36 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन वे उसका लेखा लेंगे। निकम्मी बात का मतलब है निंदा करना। हम मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसके 37 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तो निर्दोष और अपने शब्दों ही के द्वारा तो दोषी ठहराया जाएगा। आप दोषी ठहराए जाएंगे क्योंकि जो आपके हृदय के अंदर है वही आप बोलते हैं। हम आगे देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी चिन्ह की मांग करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 38 पद में हम पढ़ते हैं, तब कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी अब उससे मिलने का एक दूसरा धूर्त मार्ग अपनाते हैं। वे इसके कार्यक्रम के साथ सहभागी होने या उपस्थित होते हैं और उसे चिन्ह की मांग करते हैं। चिन्ह के द्वारा विश्वास करने का उनका कोई मकसद या विचार नहीं है, वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि प्रभु उन्हें किस प्रकार से उत्तर देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उसने उत्तर दिया, यह दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह देखने की इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मित्रों, योना का चिन्ह क्या था, आइए हम उसे भी सुनते हैं। मत्ती उसके 12 अध्याय और उसके 40 पद में लिखा है, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात विशाल मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। प्रभु ने सुनिश्चित तरीके से उनके चिन्ह की मांग को अस्वीकार किया, परंतु उन्हें पुराने नियम की 2 घटनाओं की ओर ले गया। पहली घटना योना भविष्यवक्ता के बारे में है और योना स्पष्ट रूप से मुर्दों में से जीवित हो उठा था जब वह मछली के पेट में था। परमेश्वर उसे अंधेरे और मृत्यु से बाहर निकालकर ज्योति और जीवन में लेकर आए। योना का अनुभव यीशु मसीह के आने वाले दफन और पुनरुत्थान के प्रारूप था। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 41 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। योना के आश्चर्यजनक रीति से मछली के पेट से बचने के बाद निनवे के लोगों ने योना और उसके संदेश को स्वीकार किया और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया एक राष्ट्र के रूप में। इसराइल के कार्य ने उसे एक बहुत ही घृणित स्थान में रखा, क्योंकि उसने अपने मसीह को स्वीकार नहीं किया और न ही पश्चाताप किया। दूसरी घटना जिसे यीशु ने संबोधित किया वह सुलेमान के विषय में थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 42 पद में आगे पढ़ते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई। देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। यीशु योना और सुलेमान से भी बड़ा था। शीबा की रानी ने सुलेमान के बारे में सुना और वह पृथ्वी की छोर से यात्रा करती हुई उसके ज्ञान को सुनने के लिए आई और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, परंतु वे उसकी ओर नहीं फिरे। अब हम आगे देखते हैं मूल्यहीन सुधार आंदोलन। आगे यीशु एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला दृष्टांत देते हैं, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 43 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकती फिरती है पर नहीं पाती। मित्रों, एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा है और अशुद्ध आत्मा उसे छोड़ देती है, वह व्यक्ति सोचता है कि अब वह पूर्ण रीति से साफ हो गया है, तब क्या होता है उसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 44 पद में पढ़ते हैं, तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उससे खाली झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि सुधार आंदोलन ठीक नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, आप बहुत से बुरे कार्यों को करना छोड़ सकते हैं, परंतु वह आपको एक मसीही नहीं बना देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में है अभी इस समय पाप करना छोड़ दे, तो भी अगले कुछ क्षणों में कोई अधिक मसीही नहीं हो जाएंगे या अगले दिनों में, क्योंकि पाप करना छोड़ देना किसी को मसीही नहीं बनाता है। सुधार आंदोलन वह नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 45 पद में आगे पढ़ते हैं, तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। मित्रों, यही परिस्थिति आज हम लोगों के साथ है। संसार में जो कठोर लोग हैं वे कलीसिया में बिना उद्धार पाए हुए सदस्य हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे सही हैं। वे स्वयं के सुधार आंदोलन से गुजरे हैं। वे खाली झाड़ा बुहारा और सजा सजाए हुए लोग हैं। वे एक खाली मकान के समान हैं और दुष्ट आत्माओं को यही करना है कि वो उसमें प्रवेश करें। वे दुष्ट के अधीन होते हैं, परंतु वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। सुधार आंदोलन का मतलब है मृत्यु और विनाश। पुनर्जीवन का अर्थ है जीवन और स्वतंत्रता। इस अध्याय का आखिरी भाग और भी चौंकाने वाला है और यह जो शीघ्र घटित हुआ है उसके साथ है। एक रिश्ता है जो माता और पुत्र और अपने सगे भाई से भी बढ़कर है। यही एक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह से होकर उसमें विश्वास रखने के द्वारा स्थापित हुआ है। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 46 से 49 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब वह जनसमूह से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। प्रभु कह रहे हैं कि आज का सबसे मजबूत रिश्ता मसीह और एक विश्वासी के बीच का है। मेरे मित्र, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके परिवार के सदस्य उद्धार पाए नहीं हैं, तो आप मसीह के ज्यादा नजदीक हैं। यहाँ तक कि आपके अपने लोग, माँ जिसने आपको जन्म दिया है, उससे भी अधिक आप मसीह के करीब हैं। आप अन्य विश्वासियों के साथ भी बहुत करीब हैं, यहाँ तक कि आपके परिवार के सदस्यों से भी बढ़कर। यह आश्चर्यजनक है। वह एक नए रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं। मत्तयी रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 50 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। और पिता की इच्छा क्या है? यही कि आप प्रभु यीशु मसीह की सुने और आप उसे स्वीकार करें और उसमें विश्वास करें। मित्रों, यहाँ पर 12 अध्याय समाप्त होता है और हम 13 अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे, परंतु 13 अध्याय का विषय इस प्रकार से है, स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत। इसराइलियों का इस राज्य को अस्वीकार करने के बाद से लेकर राजा के वापस आने और स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने तक राज्य की दिशा दिखाता है। मित्रों, जैसे कि हमने पहले कहा था कि मत्तयी रचित सुसमाचार संभवतः बाइबल का मुख्य सुसमाचार है। यह पुराने और नए नियम दोनों के लिए ही खुला द्वार है। यदि यह सही है तो 13 अध्याय मत्तयी रचित सुसमाचार का मुख्य अध्याय है, इसलिए यह मत्तयी 13 अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। यह हमें परमेश्वर का राज्य क्या है इसके बारे में अच्छी समझ प्रदान करेगा, जो इस पुस्तक के अन्य स्थानों से काफी अच्छा है। हम इसे दृष्टांतों के रहस्य पर भाषण देना या बोलना कहते हैं, और यह उन 3 बड़े भाषणों में से है जो मत्तयी के सुसमाचार में है। पहला है पहाड़ी उपदेश, भूतकाल को देखता है या भूमि के लिए एक व्यवस्था है। दूसरा, दृष्टांतों के रहस्य पर भाषण, वर्तमान समय में स्वर्ग के राज्य की स्थिति को प्रकट करता है। तीसरा है जैतून का भाषण, भविष्य को देखता है, राजा के वापस आने और इस आयु के पार की बातें हैं। आइए मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रभु ने संदेश देने में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अनुसरण किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जिसे हम मत्तयी 4 अध्याय के 17 में पाते हैं। और हमारे प्रभु ने उस राज्य की व्यवस्था को प्रस्तुत किया जो पहाड़ी उपदेश है। तब उसने दिखाया कि उसके पास सामर्थ है जो सक्रिय है। इसके बाद उसने अपने शिष्यों को संदेश के साथ बाहर भेजा। इस संदेश को अस्वीकार किया गया। इसराइल ने अपने राजा को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसके न्याय का हाथ उन नगरों के विरोध जहां उसने सामर्थ के काम किए थे तथा उन धार्मिक अगुओं के विरोध में भी उठा। जब उन्होंने उससे चिन्ह मांगा तो उसने उनसे कहा, योना को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना पुनरुत्थान का चिन्ह था और यह चिन्ह कुछ समय के पश्चात यीशु मसीह में पूर्ण होने वाला था। अंत में उसने बहुत ही व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, हे सर्व परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ग के राज्य का क्या होगा। यह स्पष्ट है कि वह अपने पहले आगमन में इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा। तो सताव और मसीह की महिमा के बीच के समय में स्वर्ग के राज्य का क्या होगा? ठीक है, हमारे प्रभु रहस्य भरे दृष्टांतों के साथ भाषण में हमारे सामने स्वर्ग के राज्य की स्थिति इस पृथ्वी पर उस अंतराल में क्या होगा को बताते हैं। 7 या 8 दृष्टांतों को रखते हैं। हम इसे रहस्य भरे दृष्टांत कहते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में रहस्य वो होता है जो एक निश्चित समय के लिए छिपा या गुप्त होता है और बाद में प्रकट होता है। कलीसिया एक रहस्य है। इस परिभाषा के अनुसार, जबकि यह पुराने नियम में प्रकाशन का विषय नहीं पाया जाता है, इसे यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रकट किया गया। वास्तव में जब तक यीशु मरा और फिर से नहीं जी उठा, तब तक कोई कलीसिया नहीं हो सकती थी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग का राज्य कलीसिया के साथ समानार्थी नहीं है और न ही कलीसिया स्वर्ग के राज्य के साथ समानार्थी है। परमेश्वर का राज्य आज सभी मसीही लोग हैं। संसार का वह भाग जिसमें मसीही लोगों का प्रभुत्व है वह मसीही जगत कहा जाता है। वास्तव में कलीसिया मसीही जगत में है, परंतु यह किसी भी तरह से यही सब कुछ नहीं है। यह रहस्य भरे दृष्टांत इसराइलियों को राज्य दिए जाने और उनके द्वारा उसको अस्वीकार करने के बाद यह राज्य की दिशा दिखाते हैं। वे यह प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह को इनकार करने और जब वह पृथ्वी पर राजा के रूप में लौटेगा तो इस बीच के अंतराल में क्या होगा। इन दृष्टांतों के माध्यम से हमारे प्रभु इसराइलों के द्वारा उससे अस्वीकार करने और उसका पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौटना, इस पूरे समय को इसमें सम्मिलित करते हैं। मैं इन्हें बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। अब जैसे हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं तो आप ध्यान दें कि यीशु के प्रत्येक कार्य बहुत ही मजेदार हैं। मत्ती सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वह नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। मित्रों, यहाँ पर संकेतिकता पर ध्यान दे। उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर, जो इसराइल के घराने के बारे में कहता है, और झील के किनारे जा बैठा। झील अन्य जाति को दर्शाती है। शास्त्र के अन्य हिस्सों में भी सांकेतिकता का प्रयोग हुआ है। हमारा प्रभु इसराइल देश को छोड़कर संसार की ओर फिर रहे हैं। वह अब बात कर रहे हैं, जब तक कि वह राजा के रूप में नहीं लौटता तब तक संसार में क्या होगा। यह क्रिया एक अद्भुत परिवर्तन की सूचना देती है जो उसके पद्धति में हुआ है। बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए इकट्ठी हुई और वह जहाज पर चढ़ गया और उनके साथ बात करने लगा और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्ययन समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक इस वचन पर अवश्य विचार करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें, 9958820414। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
सब कुछ दिया मेरे।
दिया।